भक्तों, सूफियों, संतों को पीड़ा जो सामंत देते थे वे हिंदू मुसलमान दोनों थे। राणा विक्रमाजीत यदि मीराबाई को जहर का प्याला पिलाता था तो आलमगीर सरमदी सूफी को कत्ल करवाता था। इसी से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि भक्ति आंदोलन सामंती व्यवस्था का समर्थक नहीं विरोधी था। भक्त कवियों ने मध्यकाल में सामंती व्यवस्था के विरुद्ध कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन नहीं खड़ा किया। वे ऐसा नहीं कर सकते थे। वे समाज का राजनीतिक आर्थिक विश्लेषण करने वाले सेमिनार शूर आधुनिक समाज विज्ञानी नहीं थे जो अपने वैज्ञानिक ज्ञान से बैंक बैलेंस बढ़ाने में माहिर हैं। भक्तों की यह कमी बताना कि वे राजनीतिक संगठन नहीं करते थे अनावश्यक है। विशिष्ट संगठन तब बनते हैं जब उनकी उपयुक्त स्थिति और बोध उत्पन्न हो जाता है। भक्त कवि भावना की साधना करते थे। उनकी साधना मुख्यतः व्यक्तिगत थी, लेकिन चूंकि वे अपनी निष्ठा के अनुसार आचरण भी करते थे इसलिए रासोन्मुखी रूढ़ियाँ उनका विरोध करती थी। भक्त कवि इन विरोधों से टक्कर लेते थे। इस टक्कर का वर्णन चित्रण उन्होंने अपनी कविता में कर दिया है। जो रासोन्मुखी रूढ़ियाँ उनके सदाचार का विरोध करती थीं वे सामंती व्यवस्था की समर्थक थीं। हम भक्त कवियों को इसी दृष्टि से और इसी अर्थ में सामंती व्यवस्था का विरोधी कहते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि इस विरोध का स्तर भावनात्मक था। यह कोई राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर स्थिर विरोध नहीं था। इस विरोध का आधार भक्त कवियों का व्यक्तिगत अनुभव था। इसके पीछे कोई सजग व्यवस्था विरोध नहीं था। वे विरोध उस अमानवीयता का करते थे जो भक्ति, सदाचार और करुणा के आड़े आती थी। सामंती राज दरबार में वे जाते थे उसकी उपेक्षा करते थे तो इसी कारण, करुणा के कारण। मीरा ने जन्म ही राजकुल में लिया था। यह भक्ति कैसी थी जिसने समस्त राज परिवार को मीरा के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वह भक्ति सामंती व्यवस्था की समर्थक थी या विरोधी, जो भक्त कवियों को दरबारों में जाने से रोकती थी और यदि कोई राजकुल में जन्मा भी हो तो उसे राजकुल छोड़ने पर विवश कर देती थी। कच्चे समाज विज्ञानी सब कुछ समझ लेते हैं, सिर्फ भावना की शक्ति और प्रवृत्ति नहीं समझ पाते। भक्ति इस भावना पर आधारित एक व्यापक आंदोलन था, अतः वह सामाजिक भी था। सामाजिक न होता तो समस्त भारत को सहस्त्र वर्षों तक प्रभावित न किए रहता। जनश्रुति है कि राणा विक्रमाजीत ने मीरा को विष दिया था। मीरा की रचनाओं में इसका बहुशः उल्लेख है। मीरा ने लिखा है कि वह विष मीरा के लिए अमृत बन गया। मान्य है कि मीरा के साथ समागम के कारण होते लोकापवाद के कारण त्रस्त हो राणा विक्रमादित्य ने अपने बीज वर्गी मुसाहब की सलाह से उसी के द्वारा फूलों की डालियों में सांप, बिच्छू तथा चरणामृत के व्यार से विष का प्याला भेजा। एक मान्यता तो यह भी है कि मीरा की मृत्यु विषपान से हुई। मीराबाई का शाप बीजावर्गी कौम को अब तक लगा हुआ है और वे मानते हैं कि उस शाप से हमारी औलाद और दौलत में तरक्की नहीं होती है। स्पष्ट है कि विषपान से मीरा की मृत्यु हो गई होती तो वह इस घटना का उल्लेख न कर पाती। संभव है कि यह प्रयत्न कई बार हुआ हो और एक दो बार वह बच जाने के बाद अंततः मीरा की मृत्यु विषपान से हो गई हो। मीरा की मृत्यु के विषय में जो अनिश्चय है उसे देखते हुए यह असंभव नहीं जान पड़ता। जो हो, इस विषय में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। सच यही है कि मीरा को राणा ने बहुत प्रकार से पीड़ित किया था। विषपान मीरा का संघर्ष का प्रतीक बन गया है, अमृत भी। मीरा को भारी लोकनिंदा सहनी पड़ी होगी। संरक्षणशील और असहिष्णु भारतीय समाज के तत्वों ने क्या क्या कहा सुना होगा, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। मीरा जब कहती हैं, मुझे यह बदनामी मीठी लगती है, चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति, मैं तो अनूठी चाल चलूंगी। राणा जी माने या बदनामी लगे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अपूठी। तो मानना चाहिए कि यह बदनामी उन्हें कड़वी भी जरूर लगती रही होगी। ऐसा जान पड़ता तो वह दर्जनों को अंगीठी में जल जाने की कामना न करती। वह निंदा करने वालों का कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं थी। कभी कभी स्त्री उचित अबला मुद्रा में उन्हें शरापती हैं, निंदा करोगे तो नरकुंड में जाओगे, आधे अपंग हो जाओगे, निंदा कर से नरकुंड, माजा से था से अंधला अपंगरे। मीरा को अपनी असहायता का तीव्र बोध है। यह बोध जितना तीव्र है उतना ही हरि के प्रति समर्पण की भावना है। इस असहायता के बोध में कहीं न कहीं अबलात्व का बोध और यह एहसास कि स्त्री सचमुच अबला होती है मिला है। पति की मृत्यु, सास ननद की ताड़ना, पिता की मृत्यु, देवर राणा का पीड़न और ऊपर से दुर्जनों की लोक निंदा, इन सब ने मीरा को बहुत असहाय मनस्थिति में डाला होगा। लोक निंदा की हालत तो यह है कि विश्व प्रसिद्ध और भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध भक्त कवित्री होने के बावजूद आज भी राजस्थान में ऐसे लोग हैं जो मीरा को अच्छी निगाह से नहीं देखते। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पर काम करने के सिलसिले में राजस्थान यात्रा का अनुभव करते हुए लिखा है। हाँ, इस बात की सूचना मुझे अपनी उदयपुर की यात्रा के ही समय मिली थी कि यहाँ मीरा के प्रति आदर बुद्धि कम है। मुझसे इसकी चर्चा चित्तौड़ दुर्ग में रहने वाले लोगों ने भी की थी। यह हालत आज की है कि जबकि मीराबाई के मंदिर राजस्थान में ही निर्मित हो चुके हैं, मीरा के जीवन काल में लोक निंदा का क्या रूप रहा होगा। इसलिए मीरा कृष्ण को निवेदित पदों में यह कहना नहीं भूलती कि वह अबला है। मां अबला बल मारो गिरिधर, मैं अबला बल नाही गोसाई, राखो अबलय का इलाज, मुझ अबला दे मोते नितान थैरे, अर्ज करा अबला करे जोरिया, श्याम तुम्हारी दासी। इस अबलापन का स्वाभाविक परिणाम यह था कि मीरा अपनी सजाती अर्थात अन्य स्त्रीजनों का उल्लेख पुरुष भक्त कवियों की तुलना में अधिक करती हैं। मीरा आत्मनिवेदन करते हुए बार बार द्रुपद सुता द्रौपदी को याद करती हैं, अहल्या कुब्जा गोपियों गणिका भक्तजन को याद करती हैं। मीरा ने पौराणिक कथाओं पर स्वतंत्र रूप से कम पद लिखे हैं। जो थोड़े से पद लिखे हैं उनमें से पूरा एक पद भिलनी शबरी पर है। अच्छे मीठे चाख चाख बिरलाए भिलणी, ऐसी कहाँ अचारवती रूप नहीं एक रती। इस पद में मीरा दो बातें कहना नहीं भूलती। एक तो यह कि भिलनी नीची जाति की थी, मैले कुचैले वस्त्रों वाली थी। दूसरे यह वही प्रभु हैं जिन्होंने गोकुल की अहिरणों का मन पवित्र किया। अहिरण भी कोई ऊंची जाति की नहीं थी। नीचे कुल ऊंची जात अति ही कुलीचणी, पतित पावन प्रभु गोकुल अहिरणी। मीरा ने मध्यकाल की एक अन्य भक्त कवित्री करमाबाई का साधन उल्लेख किया है। करमाबाई को खींच आरोग्यो होई परसण पाबंद। इन भक्त कवित्रियों के साथ मीरा जिस पौराणिक पात्र का उल्लेख बार बार करती हैं वह सुदामा है। शबरी के साथ साथ सुदामा पर भी पूरा पद मीरा ने रचा है। देखत राम हसे सुदामा को देखत राम हसे, फाहित पुलड़िया पाँव उभाड़े चलते चरण धसे, बाल पड़े मित सुदामा अब क्यों दूर बसे, कहा भावच ने भेंट पठाई तंदुल तीन पसे, कित गई प्रभु मोरी टूट टपरिया हीरा मोती लाल कसे, कित गई प्रभु मोरी गौवन बछिया द्वार बिंच हंसती हंसे। अंतिम दो पंक्तियों में गरीब से धनी बने सुदामा के मन का आश्चर्य प्रकट किया गया है कि टूटा छप्पर गाय बछड़े कहाँ चले गए। मीरा ने भीलनी शबरी के साथ सुदामा पर भी एक पूरा पद रचा तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि निर्धनता के प्रतीक सुदामा की धनहीनता मीरा का ध्यान आकृष्ट करती थी। यह कारण नहीं, भक्ति आंदोलन मुख्यतः धार्मिक आंदोलन जरूर था, लेकिन यह भी सच है कि वह लोकोन्मुख आंदोलन था। सभी भक्त कवियों में जो बात समान मिलेगी वह है लोकोत्तर, और सामान्य को सामान्य धरातल पर लाकर प्रतिष्ठित करना। भक्त कवियों ने राम और कृष्ण का जो रूप खींचा उसमें इष्टलोक के बीच घुले मिले दिखाए गए हैं। राम दीन बंधु हैं, जो जितना ही असहाय है वह राम के उतना ही निकट। भक्ति आंदोलन इस दृष्टि से अत्यंत लोकोन्मुख और करुणापूरित आंदोलन है। कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय ग्वाल बाल हैं। वे दुर्योधन के घर का मेवा त्याग कर विदुर के घर साग पाक खाने वाले सुदामा का मित्र हैं। तुलसी ने राम नाम की महिमा बताते हुए लिखा है कि राम कुलीन के कुलीन, अभागे के भाग्य, अंधे की आंख, गरीब के गाहक, गुणहीन के गुण, पंगु के हाथ पांव, भूखे के माँ बाप, बेसहारे के सहारे हैं। संबल निसंबल को, सखा असहाय को, भाग है अभागेहों को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दीन दान को, कुल अकुलीन को, शून्य है वेद साखी है, पागुरे को हाथ पाव, आधरे को आंखी है, माए बाप भूखे को, आधार निराधार को। विनय पत्रिका। भक्ति सांसारिक ऐश्वर्य की जो उपेक्षा करती है उसका कारण सांसारिक धन दौलत की कोई बुराई नहीं। बुराई इस बात में है कि उसमें लिप्त रहकर या उसे अर्जित करने के चक्कर में व्यक्ति परमार्थ को भूल जाता है। इसीलिए कनक और कामनी दोनों की उपेक्षा भक्ति करती है, वरना पेट भरने भर का धन तो कबीर साफ साफ मांगते हैं, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटी समाए। ये भक्त आर्थिक विषमता के वे कारण नहीं जानते थे जिन्हें आज के अर्थशास्त्री जानते हैं, लेकिन वे इस विषमता को देखकर उसकी पीड़ा संभवतः आज के अर्थशास्त्रियों के अपेक्षा अधिक अनुभव करते थे। आज ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं, भक्त जानते कम थे, अनुभव ज्यादा करते थे, और आचरण के क्षेत्र में तो उनकी आज के अर्थशास्त्रियों से क्या तुलना। सामाजिक विषमता पर शोध ग्रंथ लिखने वाले अनेक आधुनिक चिंतक वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था के पुरोहित हैं, जो ज्ञान के बूते पर माल काटते हैं। इस ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता अवश्य भक्ति काव्य से अधिक है। मीरा को भी यह राजभवन छोड़ना पड़ा होगा। लोक में घुलने मिलने के लिए, साधु संगति करने के लिए उन्हें सामंती वैभव का मोह त्याग करना पड़ा था। राणा के देश में सब कुछ था, गहना, गांठी, आंत का चूड़ा, काजल, टीका, महल, अटारी, नगर निवास, नहीं थे तो साधु, इसलिए वह देश कूड़ा था। मीरा ने यह सामंती वैभव त्याग कर भगवी चादर पहनी। महल अटारी हम सब त्यागे, त्याग्यो थारो बसनो शहर, काजल टीकी राणा हम त्याग्या भगवी चादर पहर। लोक लाज कुल के मर्यादा त्यागने पर यह त्यागना अनिवार्य था। जाति पाति की व्यवस्था को तोड़ने पर आर्थिक दंड पाना अनिवार्य था। कुल वर्ण जाति पाति की व्यवस्था का आधार अर्थव्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में मीरा का सुदामा की कथा से प्रभावित होना आश्चर्यजनक नहीं, स्वाभाविक लगता है। भक्त व्यक्तित्व सांसारिकता से ऊपर उठने की बात जरूर करता है, ये तो संसार के दुखों की अपेक्षा नहीं करता। जितने भी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, भक्त उन सब की आँच से झुलसता है। इसलिए मीरा द्रुपद सुता अहल्या शबरी गणिका के साथ साथ सुदामा की कथा को भी महत्व और सहानुभूति देती है। नारी का दुख उसकी पराधीनता और दरिद्रता का दुख उनके बोध में अलग रहा भी तो उनकी भाव परिधि में सिमट कर वे एक हो गए। कभी कभी अनुभूति बोध की कमी पूरी कर देती है, जैसे बोध अपने में अनुभूति को छुपाए रहता है, वैसे अनुभूति में भी बोध के सूक्ष्म तंतु सक्रिय रहते होंगे। मीरा ने यह सब सहने और त्यागने की शक्ति कहाँ से पाई? निस्संदेह भक्ति भावना और भक्ति आंदोलन से मीरा की रचनाओं में भक्ति की भावना उनकी विरह भावना से अभिन्न होकर अभिव्यक्त हुई है। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। आपके जो मनोविकार हैं उन्हें उसको समर्पित कर दे तो वह उन्हें ग्रहण करके अलौकिक बना देता है। भक्ति का मेरी जानकारी में अभी तक मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ। कहते हैं भक्त को भगवान के पास निश्चल होकर जाना चाहिए। निश्चल यानी जो कुछ तुम्हारे मन में अच्छा बुरा है उसे लेकर भगवान के पास जाओ। भक्त कवियों विशेष रूप से सगुण भक्त कवियों की रचनाओं को देखने से पता चलता है कि उनके इष्ट की मूर्ति का उनके जीवन संघर्षों से गहरा संबंध है। यह बात जीवन संघर्षों के विषय में प्रचलित झूठ सच्ची कहानियों और उन्हीं की रचनाओं में प्राप्त साक्ष्य दोनों से पुष्ट होती है। तुलसीदास अपनी रचनाओं में काम बाय से ग्रस्त होने की बात बहुत करते हैं। मृगनयनी के नयन सर को असजाही नलाग लिखते हैं। भोग की बात बहुत करते हैं तो उनके राम कामदेव कोटि मनोज लजावन हारे और पेट की अग्नि बुझाने वाले घनश्याम हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगे बड़वागे ये कठिन है आगे पेट की। इसी प्रकार सूरदास अंधे तो थे हैं, वो बांसुरी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। छबीले मुरली नैक बजाओ, सूर्य की प्रार्थना की टेक है। वीरा कवि इष्ट की मूर्ति उनकी जीवन स्थिति के मेल में है। उनका काव्य संघर्ष उनके जीवन संघर्ष का सहचर है। उनके द्वारा प्रस्तुत विभाव भाव और उनके अभाव में परस्पर संबंध है। नाभादास ने भक्तमाल में मीरा के विषय में लिखा, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो। गोपिकाएं द्वार में हुई थी, द्वापर में हुई थी, द्वापर में गोपिकाओं जैसा अनन्य प्रेम, उसके लिए घर द्वार कुल परिवार का त्याग होना संभव था, वह आदर्श था। मीरा ने कलयुग में वैसा कर दिखाया जो आदर्श था। भाव जगत की बात थी उसे जीवन आचरण में कर दिखाया। नाभादास के महत्व प्रदान का आधार यह था। मीरा का जीवन संघर्ष उनके वैधव्य से प्रारंभ हुआ। मीरा पति की मृत्यु पर सती नहीं हुई और भक्ति हो उनकी रचनाएं जो प्रधानतः विरह भावना का अभिव्यक्ति हैं, पति की मृत्यु और उनके मृत्यु के बीच लिखी गई। मीरा ने जो अलौकिक विरह वर्णन किया है उसका कोई लौकिक आधार अवश्य होगा। इस विरह भावना को बहुत तीव्र बना देता था राणा और दुर्जनों का अमानवीय व्यवहार। मीरा की कविताओं में अलौकिक प्रीतम को पाने की आतुरता, न पा सकने की व्यथा, उसके पास पहुंचने से रोके जाने का आक्रोश, अपनी असहायता, उसे भाव जगत में प्राप्त कर लेने की पुलक, सब कुछ विद्यमान। पता नहीं उन्हें जहर दिया गया था या नहीं, वह जहर अमृत बन गया था या नहीं, लेकिन उनका काव्य उनके दुख के सुख में परिणत हो जाने का दस्तावेज जरूर है। विष उनका लौकिक यथार्थ है और अमृत उनके भाव जगत का परमार्थ है। मीरा की कविता में विष और अमृत अपना प्रतीकार्थ प्राप्त कर लेते हैं। विष मीरा के संघर्ष में तब पर अमृत बन जाता है। जिसे अन्य विष समझते हैं वह मीरा के लिए अमृत बन जाता है। मीरा की कविता में अमृत और विष के जो इतने उल्लेख हैं, वे निश्चित रूप से उनकी भावना और जीवन आचरण के संघर्ष में बहुत गहरे तौर पर जुड़े हैं। हमारे युग के कवि मुक्तिबोध के विष और अन्न से मीरा का विष और अमृत बहुत भिन्न नहीं। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है वो मेरे लिए अन्न है। मुक्तिबोध चाँद का मुटेणा है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। मीरा का प्रेम अज्ञात प्रीतम भगवान के प्रति था, लेकिन क्या दीर्घ वैधव्य में उन्हें मृत पति की याद बिल्कुल ना आई होगी। हम यह देख चुके हैं कि मीरा के मन में पति प्रता के प्रति सम्मान की भावना थी। वह तुलसीदास की शब्दावली में कहती हैं, पति चाहे जैसा हो, विकलांग हो, हीन हो, कोढ़ी हो, उसी के साथ चलने में सभी लोग भला कहते, बिराना छल अपने काम का नहीं। यहाँ इस प्रसंग में मीरा सामाजिक या कुल की मर्यादा तोड़ने की बात नहीं करती। इस मर्यादा को वह शिरोधार्य समझती हैं। मीरा के साथ उनके पति का संबंध कैसा था, इस विषय में पंडित परशुराम चतुर्वेदी का विचार है कि मीरा का वैवाहिक जीवन सुखी था। वार्तिक प्रकाश श्री भक्तमाल सटीक का खड़ी बोली में गद्यानुवाद करने वाले ने अपनी ओर से कोष्टक में लिख दिया है कि मीरा के पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। मीरा के पति की अकाल मृत्यु लगभग सर्वमान्य है। मीरा के विरह निवेदन में प्रिय का जो रूप सामने आता है, उससे यही लगता है कि वह कहीं चला गया है, कहकर नहीं आया है, किसी दूसरी के घर चला गया है। वह प्रियतम आया, आंगन में घूमकर लौट गया। जब वो आया तो अभागिनी वीरहाणी से हो गई। मीरा ने प्रिय के लिए जोगी का संबोधन भी किया है। उनके कई पद जोगी को संबोधित हैं। यह जोगी कौन है? इस जोगी से प्रीति करने पर दुख होता है, वह किसी का मीत नहीं। उसकी प्रतीक्षा मीरा रात दिन करती। वह नगर में आया, मीरा उसे रोक कर रख ही नहीं पाई। उसे रोकने से कोई लाभ नहीं, और रुकेगा नहीं। बोलता मधुर है लेकिन प्रीति नहीं जोड़ता। धूर्त जोगी एक बार भी हंस कर बोला। इस जोगी को रोकने की प्रार्थना करते हुए मीरा ने प्रसिद्ध पद लिखा, जोगी मत जा, जा मत जा, मत जा। एक ही पंक्ति में न जाने तीन बार कातर याचना, मत जा, मत जा, मत जा, पांव पड़ू मैं तेरे। अगर जाना ही है तो मीरा को भस्म कर दे, उसी भस्म को अपने अंग लगा ले। इस प्रकार जोत में जोत मिल जाएगी। उसके वियोग में काले केश श्वेत हो गए। निसंदेह इस जोगी का वर्णन और इसके प्रति आत्मनिवेदन आत्मीयता के साथ किया गया है। डॉक्टर पद्मावती शबनम ने इस विषय में साहसपूर्वक कहा है, संभव है प्राप्त सामग्री की मनोवैज्ञानिक विवेचना तथा कथित मीरा के पदों में प्राय सर्वत्र प्राप्त किसी जोगी विशेष के प्रति गहरे व्यक्तिगत दाम्पत्य संबंध को व्यक्त करने वाले अंतः स्रोत का स्पष्टीकरण कर सके। मीराबाई ने जोगी के अलावा रावल का भी उल्लेख किया है। रावल कण बिलमाई राखा, रावल किसने बिलमा रखा है? चतुर्वेदी जी का कहना है, रावल शब्द का अर्थ जोगी होता है, और इस प्रकार के नाथपंथी जोगी पंजाब, हैदराबाद, अफगानिस्तान आदि में पाए जाते हैं, और उन्हें कभी कभी नाथपंथी भी कहते हैं। रावलपिंडी संभवतः इन्हीं की बस्ती के कारण नाम पड़ा है। मीरा द्वारा स्मृत चित्रित और संबोधित जोगी परम प्रियतम कृष्ण है, यही मानने लगता है। जोगी उनकी साधना पर नाथपंथी प्रभाव का प्रकट करता है, लेकिन इस जोगी को लेकर मीरा ने जो कुछ कहा है वह कुछ और भी संकेत कर सकता है। जिसके विरह में मीरा दुखी है और जिसे लेकर मीरा ने ऐसी अचूक अभिव्यक्ति की है, उसका लौकिक आधार नहीं होगा यह मानना संभव नहीं लगता। जिसके विषय में मीरा ने यह सीधी पंक्ति लिखी, था देख्या बिड़ कलणा पणता जाड़े मारी छाती, क्या मीरा के अज्ञात प्रीतम का ज्ञात आधार न होगा? मीरा ने जोगी के विषय में जो कुछ कहा है वह विरह वर्णन की परंपरा में होते हुए भी किंचित असामान्य है। जोगी की राह देखते हुए दिन बीत गए, वह आज तक आया नहीं। या तो जोगी जग भी नहीं, या उसने मुझे भुला दिया। कहे तो जोगी जग में नाही कैर विसारी मोई। अगर यह जोगी कृष्ण ही है तो वह आशंका कि वे जीवित न हो असंगत है। उस जोगी के विषय में मीरा ने यह भी लिखा है, मैं तो जानती थी कि जोगी के साथ चलेगा संग रहेगा, लेकिन वह अधबिच रास्ते में छोड़ गया। मैं तो जानू जोगी संग चलेगा, छाड़ गया अधबिच। मीरा पति की मृत्यु पर सती नहीं हुई थी। अगर चंदन की बात की चिता बनाऊ अपने हाथ जला जा, जलबल भाई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, उसी की प्रतिक्रिया तो नहीं है। इन पदों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मीरा ने अपने गेय पदों में अज्ञात प्रीतम कृष्ण का जो रूप उभारा है उसमें कहीं न कहीं उनके मृत पति का रूप भी घुल मिल गया है। पहले मीरा की ऐसी पंक्तियां उद्धृत की जा चुकी हैं जिससे पता चलता है कि वे अपने पति के साथ चलने की मर्यादा को स्वीकार करने वाली महिला थी। मृत पति की स्मृति का कृष्ण के रूप में शामिल न होना अस्वाभाविक होगा। मीरा के गिरधर नागर का जो रूप निर्मित हुआ है उस पर मूर्ति की निर्मात्री का बहुत गहरा प्रभाव है। गिरधर नागर स्थित भाव जगत में है, लेकिन जिन उपकरणों से उनका निर्माण हुआ है वे इसी जगत के हैं। वे मीरा के जीवन संघर्ष से उपजे हैं। इस मूर्ति में मीरा की पीड़ा शमित होकर रूपांतरित हो जाती है। अभाव ही समाप्त नहीं होते, विष बुझता ही नहीं अमृत में बदल जाता है। मीरा की पदावली में प्रधानतः मीरा मन की तीन स्थितियां हैं। मीरा ने गेय पदों में ही रचना की, लेकिन उन्हें क्रमबद्ध करके सुविन्यस्त किया जा सकता है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने अपूर्ण सहृदयता का परिचय देते हुए इन्हें पूर्वराग विरह और मिलन में विभाजित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। फिर बच जाते हैं कुछ फुटकल पद। विरह की स्थिति वह तापगृह है जिसमें पककर मीरा का लौकिक विरह भाव मिलन में विष अमृत में परिणत होता है। पूर्वराग क्या है? मीरा कृष्ण की रूप माधुरी का विविध चेष्टाओं में चित्रण वर्णन है। इसमें नायिका संकोचवश कृष्ण के सामने नहीं हो सकती। नायिका प्रायः दरवाजे पर खड़ी प्रतीत प्रतीक्षा करती है। कृष्ण आते हैं, चले जाते हैं, वे आते ही हैं तो संकोच ऐसा है कि आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो घुस गई लाज की मारी। विरह की प्रक्रिया से गुजरकर मिलन सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रिय का यह रूप ऐसा है कि लोक का ताप मीरा के वास्तविक जीवन का संताप दूर करने वाला है। वस्तुतः वह उसी संताप से विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने वाली उसी से संबंध रूप है। जिस प्रकार मीरा के संताप का कारण तत्कालीन समाज और मीरा के बाह्यांतर स्थितियां हैं, उसी प्रकार प्रिय के शामक एवं सुखद रूप के तत्व भी उसी समाज और मीरा के बाह्यांतर स्थितियों में विद्यमान है। दोनों परस्पर विरोधी तत्व बाह्यांतर यथार्थ में मौजूद हैं जिनसे मीरा का रचना संसार संबद्ध है। गिरधर नागर परम सुंदर हैं। उनकी सुंदरता मन को तत्काल मोह लेती है। वह मंद मंद मुस्का कर देखते हैं तो मन सहसा आकृष्ट कर लेते हैं। उनकी छवि के विषय में मीरा ने विवलतापूर्वक अनेक पद लिखे हैं। इस बात को अलग से रेखांकित करने की विशेष आवश्यकता नहीं। वह मुरली तो बजाते ही हैं, उनके वचन भी बहुत मधुर हैं। दुजनों की वाणी कड़वी है। उनकी कटुवाणी और हंसी का बयान भी मीरा ने बहुत किया है। मीरा को सास ननद देवर जगत पंडित पुरोहित सबकी कड़वी वाणी सुननी पड़ती थी। कड़वा बोल लोक जग बोलिया, करसिया मारी हांसी। पद संख्या 45। सास लड़े मेरी नंद खिचावे, राणा रहिया रिसाव। पद संख्या 42। सासु कहिया कुलनासा। पद संख्या 36। और तो और मीराबाई के पुरोहित रामदास जी भी मीरा को गाली देकर चलते बने थे। मीराबाई का कसूर यह था कि उन्होंने पुरोहित जी से ठाकुर जी का कोई और पद गाने को कह दिया था। सो एक दिन मीराबाई के श्री ठाकुर जी के आगे रामदास जी कीर्तन करते होते, सो रामदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके पद गावत होते, तब मीराबाई बोली जो दूसरों पद श्री ठाकुर जी को गावो। तब रामदास जी ने कहियो, मीराबाई सो जो अरे दारी रांड, यह कूंड को पद है, यह कहाँ तेरे खसम को मुंड है, जो आज ज तेरी मोहड़ों कबहू न देखोंगे। मीरा के प्रियतम मीठा बोलने वाले हैं। मीरा को इस कड़वे बोलने वाले जगत में मीठे बोलने वाले प्रिय निश्चय बहुत आकर्षक लगते रहे होंगे। उनकी मीठी बोली सुनते ही सुबदा सुनता छतियां कांपा, मीठो थारो वैंड। स्त्री की इस विशेषता को मीरा ने कई स्थानों पर उल्लिखित किया है। जमण किनारे कान्हा धीरु चरावा वंशी बजावा मुछड़ा वाणी पद संख्या 11। आओ मन मोहना जी माठो थारो बोल पद संख्या 100। जगत के दुर्जन अबला की हंसी उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, मीरा इस संसार में अकेली है। जगत उनके मरण पर भी हंसी उड़ाता है। मीरा का दर्द कोई नहीं जानता, वही जानते हैं जो स्वयं घायल हैं। लेकिन ऐसे लोग संसार में कितने, अधिकतर तो लोग हंसी ही उड़वाने चलते हैं। मीरा का विरह असह्य अबला का विरह है, इसीलिए और अधिक करुण और समर्पणशील है। कहीं कहीं मीरा ने विरह के निहायत शांत एवं एकांत चित्रण किए हैं, जैसे रात्रि में अकेले कोई दीप जल रहा हो। रीमा बैठिया जागा जगत सब सोवा, ऐसी विरहणी के प्रिय अबलाओं की अर्ज सुनने वाले हैं। द्रुपद सुता की लाज रखने वाले, अहल्या परित्यक्तता का उद्धार करने वाले, भिल्ली शबरी का सत्कार करने वाले, गणिका भक्तिन को तारने वाले, सुदामा की निर्धनता दूर करने वाले, भक्ति आंदोलन ने भगवान का जो रूप खींचा था वह दीन बंधु और करुणा कातर का था। मीरा ने भी भगवान का जो रूप खींचा है वह उनके और अन्य जैसे अन्य पीड़ित जनों के काम आने वाला है। मया सुणिया हरि अधम उदाहरण भवतारण गज गुणता अरज सुण दाधा भगता कष्ट निवारण द्रुपद सुताणो चीर बढ़ाइया दुशासन मद मारण प्रहलाद पर ताज्ञा राख्या हरणा कुणो उद्र विदारण थय रिख पतणी कृपा पाइया विप्र सुदामा विप्र विदारत।